नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे, सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है, यह जीवन की गति रही है। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही हैं। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है, संभव होना है फिर भी। उठो वैरागियों, उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। तू शीतल झरना मेरे प्रभु, मैं हूं तेरी प्यासी हिरनी। तू शीतल झरना मेरे प्रभु, मैं हूं तेरी प्यासी हिरनी। शीतल झरने के पास ले चलो प्रभु तुम, मन की अभिलाषा को पूरा करो तुम। अमृत जल मुझको पिला दो, तू शीतल झरना प्रभु, मैं हूं तेरी प्यासी हिरनी। जब मैं खो जाती हूं जग के अंधियारे में, जब मैं घबराती हूं बेचैनी दिल में, शुभ सरिता मुझ में बहा दो, तू शीतल झरना मेरे प्रभु, मैं हूं तेरी प्यासी हिरनी। शीतल शब्द में ही अनुभूति समाई हुई है और परमात्मा वो शीतल झरना है। विकारों ने आत्मा को तप्त किया है, विकारों ने आत्मा को जलाया है। शीतल जल की आवश्यकता है। और आत्मा प्यासी है। बाप आकर तुमको शुभी रस पिलाते हैं, सोम रस पिलाते हैं, ज्ञान जल पिलाते हैं, ज्ञान दूध पिलाते हैं। शीतल झरने के पास ले चलो प्रभु तुम। आधा कल्प देवताओं के साथ रहे, आधा कल्प आसुरी संप्रदाय के साथ रहे, भक्त अब कहते हैं सुबह की साकार मुरली। अब बाप के साथ रहकर देखे, भगवान के साथ रहकर देखे, मनुष्यों के साथ रहकर देख लिया, देवताओं के साथ रहकर देख लिया, आसुरी संप्रदाय के साथ रहकर देख लिया, अब किसके साथ रहो? बाप के साथ। शीतल झरने के पास ले चलो प्रभु तुम, मन की अभिलाषा को पूरा करो तुम। जन जन की आश थी तुमको पाने की, तुमसे मिलने की, वो पूरी हुई है। ये जन्म अलौकिक जन्म है सुबह की वाणी, ये जन्म ऊंचे ते ऊंचा जन्म है, ये जन्म अमूल्य जन्म है, ये जन्म अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म अमूल्य जन्म, ऊंचे ते ऊंचा जन्म, मर्जीवा जन्म। अमृत जल मुझको पिला दो, तू शीतल झरना मेरे प्रभु, मैं हूं तेरी प्यासी हिरनी। जब मैं खो जाती हूँ जग के अंधियारे में, अंधियारा है संसार में, बाप तुम्हें गुई और रमणीक बातें बताते हैं जो तुमने न कभी पढ़ी न सुनी, जो कहीं पर भी नहीं है वो बातें। जगत अंधा अंधियारे में, जब मैं घबराती हूँ बेचैनी दिल में, हृदय में बेचैनी है, क्यों है पता नहीं, पर है, अस्थिरता है, कुंठा है, एक अजीब सी बेचैनी, शुभ सरिता मुझ में बहा दो, तू शीतल झरना मेरे प्रभु। शीतल झरना है वो, शीतलता का सागर है वो। शीतल अर्थात सर्द, ठंडा, शीतल अर्थात हल्का, शीतल अर्थात ठंडा और शीतल एक ही है। सौम्य, शीतल अर्थात सौम्य। शीतल, शीतला देवी, तो भगवान वो शीतल झरना है। भक्त और भगवान का मिलन, आज अव्यक्त मास का 9वां दिन। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं। चिंतन बाप में, ड्रामा में, ब्राह्मण परिवार में कहां तक निश्चय है? निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानियां क्या होगी? योगाभ्यास, ब्रह्मा बाप निश्चय के आधार से नंबर 1 बने, निश्चय बुद्धि आत्मा इस यज्ञ के किले का फाउंडेशन बन, बाप दादा को हाजिरा हजूर समझ, उसकी छत्र छाया के नीचे सदा निश्चिंत विजयीपन के अनुभव में बैठकर योग अभ्यास करे। तो आज का सम्मान, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। निश्चय अर्थात, निश्चय अर्थात, निश्चय किसे कहा जाता है? निश्चय का अर्थ विश्वास निश्चय अर्थात विश्वास निश्चय अर्थात श्रद्धा निश्चय अर्थात फेथ निश्चय अर्थात ट्रस्ट निश्चय अर्थात ईमान निश्चय अर्थात विश्वास भरोसा। जहां निश्चय है वहां भय नहीं और जहां संशय है वहां भय है और जहां भय है वहां शिव नहीं। तो मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। निश्चय बुद्धि आत्मा इस यज्ञ के किले का फाउंडेशन बन। कल की अव्यक्त वाणी यज्ञ किला और तीसरा विश्व के लिए छत्र छाया। ये यज्ञ क्या था? ये यज्ञ क्या बन गया? किला। इस किले की नींव फाउंडेशन और किले की दीवारें और जिसकी ईंटें स्नेही सहयोगी अचल अटल आत्माएं। यज्ञ क्या बना? किला। और किला क्या बन गया? विश्व के लिए छत्र छाया। कल की अव्यक्त वाणी शुरुआत यज्ञ किला छत्र छाया। शुरुआत हुई यज्ञ किला छत्र छाया। शुरुआत हुई मंडली, मंडली से स्कूल, स्कूल से कमिटी, कमिटी से यज्ञ, यज्ञ से संस्था और संस्था से विश्व के लिए छत्र छाया। निश्चय बुद्धि आत्मा इस यज्ञ के किले का फाउंडेशन बन। बाप दादा को हजीरा हजूर समझ उसकी छत्र छाया के नीचे सदा निश्चिंत। निश्चिंत अर्थात चिंता नहीं, निश्चिंत अर्थात बेफिक्र, निश्चिंत अर्थात निष्फूर्णा, निश्चिंत अर्थात केयर फ्री, निश्चिंत अर्थात स्ट्रेस फ्री, निश्चिंत अर्थात टेंशन फ्री, बेफिक्र, निश्चिंत अर्थात कोई तनाव नहीं, तनाव मुक्त, डिप्रेशन फ्री। विजयीपन के अनुभव में बैठकर योग अभ्यास करें। यह है निश्चय बुद्धि आत्मा। निश्चय एक यात्रा है, निश्चय एक यात्रा है। धीरे 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 निश्चय दृढ़ होता है। पहले जो होता है वो ब्लाइंड फेथ होता है, क्योंकि सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, सब सुन रहे हैं तो हम भी सुन रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है इसलिए हमें भी अच्छा लग रहा है। वो एक अवस्था है, उसे ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, क्योंकि जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ है जहां सभी ज्ञान में चलते हैं। फिर धीरे धीरे इस ब्लाइंड फेथ के साथ में लॉजिक जुड़ता है ज्ञान का, तब ज्ञान समझ में आता है। और धीरे धीरे इस लॉजिक के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़ता है। तो निश्चय की यात्रा इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी की यात्रा है, इमैच्योर निश्चय से मैच्योर निश्चय, परिपक्व निश्चय का की परिपक्वता। वो एक दिन में नहीं आती है, धीरे धीरे धीरे, जैसे याद यात्रा है निश्चय भी यात्रा है। निश्चय की यात्रा, द पिलग्रिमेज ऑफ फेथ ट्रस्ट। और फिर जीवन में परिस्थितियां आती है, विकराल परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में निश्चय की परीक्षा होती है और निश्चय और दृढ़ होता है। निश्चय को एक ही दिन में निश्चय बुद्धि नहीं हो जाता है, निश्चय लंबी यात्रा है। धीरे 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 निश्चय दृढ़ होते जाता है, पक्का हो जाता है, सबल होते जाता है, मैच्योर परिपक्व होते जाता है। निश्चय की यात्रा लंबी यात्रा है, या कहो जीवन भर की यात्रा निश्चय की यात्रा है। तो आज का समान, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। सुबह की साकार मुरली, दर्पण में देखो, क्या देखो? भरने के लायक हूँ या नहीं हूँ, अपने आप को देख सकते हो और सारे दिनचर्या सामने आ जाएगी। कितना याद करता हूँ, वास्तव में देखने का मिरर मेडिटेशन, आईने में देखना, क्या देखेंगे शाम को या रात को सोने से पहले, आईने के सामने बैठना और आईने को देखना, उसमें जो आत्मा है उसको देखना, इसको मिरर मेडिटेशन कहते हैं। और अगर कोई वास्तव में करने बैठे तो धीरे 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 एक और अनुभव होने लगेगा, वो कौन सा, शरीर गायब होने लगेगा। 5 मिनट बैठ जाओ आईने के सामने, 10 मिनट, फिर धीरे धीरे ऐसा अनुभव होगा, ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो चेहरा है ये गायब होते जाएगा और हमारे पूर्व जन्म में क्या क्या चेहरे थे वो दिखने लगेंगे धीरे धीरे। इसको मिरर मेडिटेशन कहा जाता है। कितनी श्रद्धा से कोई कर रहा है, कितना निश्चय से कर रहा है, बस भ्रुकुटी के मध्य जो विराजमान आत्मा है उसको देखते रहना देखते रहना देखते रहना, धीरे धीरे ये चेहरा लुप्त हो जाएगा। और अगर साधना की निरंतरता रही तो वो भी दिखेगा, इसके पहले जन्म का, फिर जन्म का, फिर जन्म का, फिर धीरे धीरे देवता वाला आ जाएगा। मिरर मेडिटेशन आज का होमवर्क है मुरली में, आईने में वास्तव में देखने के लिए कहा है। ऐसा नहीं कि जो हमेशा कहते हैं कि आईने में देखो, वो नहीं, मुखड़ा देख ले प्राणी, वास्तव में देखो तो तुमको सारी दिनचर्या सामने आ जाएगी। सुबह के महावाक्य है ये, योग की यात्रा, हमेशा याद की कहते हैं, आज कहा योग की यात्रा। तो ये जो निश्चय है, निश्चय कई प्रकार के, एक होता है वीक फेथ, एक होता है स्ट्रॉन्ग फेथ, एक होता है ब्लाइंड फेथ, एक होता है रिलीजियस फेथ, कई प्रकार के निश्चय होते हैं फेथ। जीसस क्राइस्ट गैलिली की झील में बैठा हुआ है और उसके शिष्य है, उसे नींद लग गई, वो सो गया, वो 12 शिष्य उस नौका में हैं और अचानक तूफान आ जाता है और तूफान इतना बढ़ता है कि पानी नौका के अंदर आने लगता है, वो सारे घबरा जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, क्या करे क्या करे कैसे करे। वो देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट तो सोया पड़ा है वहां, उसके पास जाके कहते मालिक, मास्टर, सेव अस, हमको बचाओ। जीसस क्राइस्ट खड़ा होता है, हाथ ऐसे करता है, पीस बी स्टिल, शांत हे तूफान, शांत शांत, और तूफान शांत हो जाता है। और फिर एक वाक्य वो अपने सभी शिष्यों से कहता है, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, हे कम ईमान वालों, तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है, जिस नाव में मैं बैठा हूं वो डूबेगा कैसे, इतने समय से तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है, हे कम ईमान वालों, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ। उसी तरह एक दूसरा भी उदाहरण है, जीसस क्राइस्ट को सूली लगती है, तीसरे दिन कहते वो फिर जाग उठता है, जी उठता है, रिजरेक्शन। और उसके जो शिष्य होते हैं वो तो अभी भी भागते फिर रहे, क्योंकि लोग अभी भी दुश्मन है। एक जगह पर वो सभी 11 शिष्य छिपे हुए हैं और अचानक एक दिन जीसस क्राइस्ट आ जाता है और वो अपने सभी शिष्यों से मिलता है, 11 में से एक नहीं रहता है, थॉमस नाम का, 10 रहते हैं, थॉमस कहीं गया है और एक ने तो पहले ही धोखा दे दिया है तो वो तो है ही नहीं वहां, तो 11 में से एक नहीं है। तो जब वो वापस आता है, जीसस तब तक चला जाता है, तो बाकी 10 शिष्य उस थॉमस से कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट यहां आए थे, वो कहते हैं मैं नहीं मानता वो आया था, मैं कैसे मानूं, मैं जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं, मैं अपनी आंखों से देखूंगा, उसके जो हाथों में कील ठोकी गई थी वो मैं हाथ लगाऊंगा तब मानूंगा। और उसी समय जीसस क्राइस्ट फिर आते हैं और फिर थॉमस से कहते हैं देखो यहां हाथ लगाओ, पैरों को हाथ लगाओ, ये मैं ही हूं। कम टच हिदर thy हैंड ऑन my sides, तब वो गिरता है नीचे और कहता है माफ कर दो। वहां एक वाक्य है बाइबल में, जीसस कहता है जिसको हमने देखा है उसको मानना बहुत आसान है, लर्न टू बिलीव इन दोज थिंग्स विच यू हैव नॉट सीन, जो तुमने देखा ही नहीं उसको मानना, ये है महानता। तो फेथ दो प्रकार के है, एक वीक फेथ एक स्ट्रॉन्ग फेथ, एक ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ अर्थात जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, सभी कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं। और एक है रिलीजियस फेथ, रियल फेथ, ट्रू फेथ अनट्रू फेथ। कई कैटेगरीज हो सकते हैं निश्चय की, एक वो निश्चय जो परिस्थितियों में डगमगाता नहीं, एक वो निश्चय जो डगमगाता है, अलग अलग निश्चय कैटेगरीज बना सकते हैं जितनी बनाना चाहे। तो आज हम देखेंगे निश्चय के आधार स्तंभ क्या है, ऐसे 8 आधार स्तंभ, निश्चय के परिणाम नहीं, निश्चय के आधार स्तंभ। निश्चय किस बात पर टिका हुआ है इस ब्राह्मण जीवन में हमारा, या हम किस निश्चय के कारण यहां आए, वो बातें। एक चोर चोरी के इरादे से यहां वहां घूम रहा है और भटकते भटकते एक सभा मंडप में आ जाता है और वहां पर भागवत पुराण भागवत कथा चालू है, और जो भागवत पाठी है वो श्री कृष्ण लीला भागवत का 8वां अध्याय उसका वर्णन चालू है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का। इस चोर ने कभी कृष्ण का नाम सुना नहीं आज तक, उसका जीवन चोरी में ही गया बचपन से, उसे ये सब बातें कुछ भी पता नहीं है। और वो जो भागवतकार है, वो जो पंडित जी है, बुजुर्ग है, वो सुना रहे हैं कि कैसे यशोदा मैया कृष्ण को नहलाती है और कैसे यशोदा मैया श्री कृष्ण को रेशमी कीमती वस्त्र पहनाती है और कैसे यशोदा मैया सोने का मुकुट मोर पंख और आभूषण पहनाती है। इस चोर को लगता है हो ना हो जरूर इस पंडित को ऐसे किसी अमीर बालक का पता है, तो कहता है एक बार ये प्रवचन पूरा हो जाए फिर पकड़ता हूं इसको पंडित को, इसी से पता चलेगा कि ये किस बालक का वर्णन कर रहा है और इतना विविड इतना सजीव चित्रण कर रहा है तो जरूर इसको पता ही होगा। और ऐसा कोई बालक होगा जिसमें इतने सारे आभूषण है, अगर ये मुझे मिल जाए तो सारे आभूषण चुरा लूंगा और माला माल हो जाऊंगा। प्रवचन पूरा होता है, पंडित जी को देखता है, बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, जब मिलने वालों की संख्या कम होती है और पंडित जी जा रहे होते, एकदम उसको पकड़ लेता है, कहता है बताओ वो बच्चा कहाँ है जिसका तुम वर्णन कर रहे थे। वो पंडित जी घबरा जाता है, कौन सा बच्चा, मुझे कुछ नहीं पता बच्चे बच्चे के बारे में। कहते अभी जो तुम बता रहे थे कि जिसके मोर मुकुट है, आभूषण है, रेशमी वस्त्र है, वो ही बच्चा बताओ। वो कहता है वो बच्चा बिच्चा कुछ नहीं, वो तो काल्पनिक कहानियां थी, मैं ऐसे ही सुना रहा था भक्तों को, वो तो काल्पनिक पात्र है एक पुराण का। वो चोर कहता है नहीं बताओ नहीं तो मैं मार दूंगा तुमको। वो पंडित जी इतना घबरा जाता है, अब करूं क्या, ये तो छोड़ने को तैयार नहीं। वो कहता है एक काम करो, हाँ हाँ वो बच्चा है उसका नाम कृष्ण है और वो जो घना जंगल है ना उसके अंदर वो रहता है, जाओ। और पंडित जी सोचता है वहां जंगली जानवर है, वो जानवर इसको मार देंगे मेरी जान छूटेगी। और वो चोर उस घने बिहड़ जंगल में घुसता है और चिल्लाने लगता है कृष्ण 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 कहाँ है कहाँ है। और जो चित्रण उसने सुना था, जो वर्णन उसने सुना था कि वो कृष्ण ऐसा है ऐसे आभूषण है, उसे तो आभूषण चाहिए, उसकी खोज उसकी प्यास गलत थी, पर मंशा गलत थी, परंतु अब प्यास तीव्र हो रही है। एक दिन दो दिन तीन दिन न खाना न पीना न नींद, बस कृष्ण कृष्ण और कृष्ण ढूंढ रहा है जंगल में। उसके पैरों में कांटे चुभ गए, पत्थर चुभ गए, खून निकल रहा है, पर उसे बस कृष्ण। वो ये भी भूल रहा है मैं कृष्ण को क्यों पुकार रहा हूं। उसे चोर, वो चोर है, उसे आभूषण चाहिए, वस्त्र चाहिए बहुमूल्य, वो सब चाहिए, परंतु अब वो सब भूल गया है और तीसरे दिन बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तब भी वो कृष्ण 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 कह रहा है। देखता है वो किसी की गोद में है, तो देखता है ये तो वही बच्चा है एकदम सुंदर, वो कृष्ण की गोद में है। और कृष्ण उससे कहते हैं, कृष्ण बालक कहते हैं अच्छा उठ गए थोड़ा सा खा लो। वो बस कृष्ण को देख कर ही मोहित हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है कि बस उसको निहारते रहता है निहारते रहता है। और फिर कृष्ण उसको खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर कहते हैं अच्छा तो तुम्हें मेरे आभूषण चाहिए। तो कृष्ण अपने सारे आभूषण और वो सब निकाल के एक पोटली में डाल के उसको देखते हैं, वो कहते हैं मुझे तुम्हारे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम ही चाहिए, तुम और बस तुम और कुछ नहीं, बस तुम्हारी गोद में ही मुझे सोए रहना है, तुमको मैं देखता रहूं, आज की मुरली तुम्ही से खाऊं, सब कुछ तुम्ही के साथ तुम्ही से बैठूं, तुम्ही को देखूं, तुम्हारे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं चाहिए। और कृष्ण उसे कहते नहीं तुम ले लो, वो कहते नहीं चाहिए, फिर भी उसको देते और थोड़ी देर में कृष्ण गायब। और अगले दो तीन दिन वो फिर कृष्ण को ढूंढते रहता है उसी जंगल में कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चाहिए केवल, तुम्हारे अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए। और जब तीन चार दिनों के बाद में भी वो पंडित जी नहीं मिलते तो वो वापस गांव आता है और वापस सबसे पहले जाता है पंडित जी के घर। और पंडित जी दूर से देखते हैं यार है दरवाजा बंद खिड़कियां बंद, वो आके ठकठकाता है ठकठक करता है, वो कहता है खोलो खोलो, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं खोलूंगा, वो कहते हैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। अंततः वो पंडित जी दरवाजा खोलते हैं और वो सीधा चरणों में गिरता है और कहता है आप मेरे गुरु, आपने मुझे कृष्ण से मिला दिया और कृष्ण से मेरी मुलाकात हुई और कृष्ण ने मुझे गोद में सुलाया और ये सब आभूषण में लेके आया हूँ, ये सब वस्त्र कीमती बहुमूल्य। वो कहता है कृष्ण से बहुमूल्य हो ही नहीं सकता, तुमने ज़रूर किसी अमीर व्यक्ति के बेटे को मार दिया होगा और उसके आभूषण लेके आ गए। वो कहते हैं नहीं मैंने देखा है उसको। वो पंडित जी उन आभूषणों को देखते और कहते ये तो साधारण आभूषण नहीं है, ये देवताओं के आभूषण है। और जिस तरह का वो वर्णन कर रहा है वो वैसा ही वर्णन कर रहा है। एकदम उस पंडित जी को लगता है इस पापी ने, इस चोर, ये पापी, इसने कृष्ण के दर्शन कर लिए और मैं पिछले 40 साल से भागवत कथा कर रहा हूँ, मुझे दर्शन नहीं हुए, वो सब कुछ छोड़ के जंगल भागता है। कौन? पंडित जी। और कृष्ण 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 चिल्लाते रहते परंतु कृष्ण कहीं है ही नहीं। आखिरकार कहता है कि मेरा जीवन व्यर्थ गया, झाड़ से एक रस्सी लगाता है और कहता है जीवन ही अभी समाप्त कर देता हूं। और जब करने ही वाला होता तो आवाज आती है, कृष्ण नहीं आते, आवाज आती है कि रुको। वो जो था वो चोर था, उसे कुछ भी पता नहीं मेरे विषय में, फिर भी उसका निश्चय, उसका विश्वास, उसकी प्यास जी जो थी मुझे पाने की, तपस्या की शक्ति बन गई। प्रभु को पाने की प्यास क्या बन जाती है? तपस्या की शक्ति बन जाती है। और उसने मुझे पा लिया और मैंने उसे दर्शन दिया। और तुम जो 40 सालों से मेरी कथा करते हो और कहते हो कि मैं काल्पनिक पात्र हूं, तुम मेरा गुणगान करते थे, पर जब संकट की घड़ी आई तो तुमने क्या कहा? मैं काल्पनिक पात्र हूं। यही तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारा निश्चय? ओ ये ऑफ लिटिल फेथ, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? ये विश्वास है तुम्हारा। वो माफी मांगता है। कृष्ण कहते हैं कि इसी जन्म में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, पर अब नहीं, जाओ फिर से मेरा गुणगान करते रहो। अगर तुम्हारी भक्ति पूरी हुई तो हो सकता है इसी जन्म में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो निश्चय जो है किस तरह उत्पन्न होता है और कहां उत्पन्न होता है, निश्चय की यात्रा है। चोर ने कभी सोचा नहीं होगा, परंतु कितना बड़ा उसके अंदर सुषुप्त प्रभु मिलन की आश थी, वो एकदम जागृत हो गई और उसने भगवान को पा लिया। और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आज सुबह की साकार मुरली कैसे अनपढ़ है, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, मैं चुप रहूंगी। 1962 में फिल्म रिलीज हुई थी, बाबा को किसी बहन ने दिल्ली से आकर बताया था ब्रह्मा बाबा को कि बाबा ये फिल्म रिलीज हुई है, मैं चुप रहूंगी। बाबा ने मुरली में उसी दिन की ये मुरली है शायद, बाबा ने कहा तुम्हें कुछ बोलना नहीं है मुख से, मैं चुप रहूंगी, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, उसी में है वो गीत, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, ना तुम्हें कुछ ज्यादा जानने की आवश्यकता है। या फिर आज की मुरली में तो बाबा ने कुठाराघात प्रहार किया है सारी किताबों पर, किताबें पढ़ने से मैं नहीं मिलता, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, यहां तक कि शास्त्रों से जो यूनिवर्सिटी की किताब है वो ज्यादा अच्छी है, उसमें थोड़ी कमाई तो होती है, ये बहुत पॉइंट टू बी नोटेड, शास्त्रों की जो शास्त्रों से ये मेडिकल की इंजीनियरिंग की वो फिर भी ठीक है, लौकिक पढ़ाई, पर ये जो धार्मिक और स्क्रिप्चर्स है इससे तो कुछ भी नहीं होगा। ये कितना बहुत पावरफुल पॉइंट है आज की मुरली का। तो निश्चय के 8 आधार स्तंभ है, परिणाम नहीं कह रहे हम, परिणाम तो अभी जो हो रहा है वो परिणाम है सारे, समर्पण निश्चय का परिणाम है, आधार नहीं। जीवन अर्पित कर देना प्रभु को, यह निश्चय का परिणाम है। सेवा करना यह परिणाम है निश्चय का, आधार नहीं, आधार कुछ और है। तो निश्चय का सबसे पहला आधार है ज्ञान। जब हम नए नए आए तो हमें सबको नहीं परंतु कुछ को किसने आकर्षित किया, इस अद्भुत ज्ञान ने। यह अजीब ज्ञान है, यहां पर ऐसा ज्ञान पहले कभी सुना नहीं, ऐसे चित्र पहले कभी देखे नहीं, इतने रमणीक चित्र, ऐसी बातें कभी नहीं सुनी किसी ने, स्ट्राइकिंग। इसलिए इस ज्ञान के आधार पर निश्चय, परंतु इसके आधार पर आने वाले कम है। ये वो लोग हैं जो लॉजिकल माइंडेड है। इस यज्ञ में दो प्रकार के दो विभाजन है, एक है मिस्टिक्स, एक है फिलोसोफर्स। मिस्टिक्स अर्थात भावना वाले भगत, जिनको ज्यादा बुद्धि नहीं चलाते, ज्यादा दिल वाले, और दूसरे है फिलोसोफर्स, रीजनिंग वाले, तर्क वाले, लॉजिक वाले, दिमाग वाले। तो ये दो कैटेगरीज है, पर कभी भी दो कैटेगरीज एकदम डायरेक्ट नहीं रह सकती, हर एक में दोनों रहता है, केवल मात्रा कम ज्यादा होगी, किसी में भावनाओं की मात्रा ज्यादा है, किसी में लॉजिक की मात्रा ज्यादा है। तो जो ज्ञान के आधार से जिनको निश्चय बैठा, किसी किसी को दोनों होता है, ऐसे भी है, तो हमेशा मिक्स्ड रहेगा। प्योरली ज्ञान के आधार से प्योरली दिमाग वाले कम है, प्योरली भावना वाले कम है, पर हो सकते। तो एक आधार है, पहला आधार है निश्चय का ज्ञान, कि ज्ञान उन्होंने बाकी सारे शास्त्र पढ़े हैं, सारी फिलोसॉफीज पढ़ी है, ईस्टर्न वेस्टर्न सारी फिलोसॉफीज पढ़ने के बाद फिर ये जब पढ़ा या इसके संपर्क में जब आए तो एकदम शॉक्ड हो गए, ये क्या है, ऐसा कभी नहीं सुना है पहले। तो ज्ञान के आधार, ज्ञान निश्चय का आधार है एक। दूसरा आधार है प्रेम। प्रेम इतना मिला, बहनों का प्रेम, शिव बाबा का प्रेम, सबका प्रेम, सेंटर का प्रेम, सब प्रेम 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 से ही आ गए, उन्हें ज्ञान भी नहीं पता पूरी तरह से, बट प्यार इतना ज्यादा है कि कुछ नहीं, ना कोर्स हुआ, वैसे ही सेवा कर रहे, उन्हें कुछ पता नहीं, परंतु प्रेम के आधार पर ही आ गए, प्रेम से ही निश्चय फिर धीरे धीरे परिपक्व हुआ, फिर धीरे धीरे समझ में आया। ज्ञान तो बहुत बाद में समझ में आया, ज्ञान पहले थोड़ी समझ में आता है। भाषा व्यक्ति कैसे सीखता है, हम जिस घर में जन्म लिया उन जो माँ बाप बोलते वो हम बोलने लगते, हिंदी घर में जिसने जन्म लिया हिंदी ग्रामर से सीखता है क्या, वो ग्रामर तो स्कूल में जाने के बाद पता चलता है, बोलना तो पहले ही चालू कर देता है, ग्रामर बाद में पता चलता है, व्याकरण बोलना पहले ही चालू हो जाता है। उसी तरह यहां पर भी प्रेम के आधार से ज्ञान में आए। ज्ञान में आने का आधार क्या है, प्रेम। सबने प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि वो प्रेम नहीं से पिघल गए, ने कुछ पता नहीं ज्ञान की वजह, ना धारणाओं के बारे में पता है, कुछ नहीं, वो सब बहुत बाद में पता चला। तो निश्चय इसी से हो गया। तीसरा आधार संबंध। निश्चय का आधार संबंध, एक बाप से संबंध जुड़ा, एक नया संबंध पता चला, या परिवार से संबंध जुड़ा, या बहनों से संबंध जुड़ा, भाई बहनों से संबंध जुड़ा, एक नया ही संबंध है। यहां पर हर एक दूसरे को भाई बहन ऐसा कहते, पता ही नहीं चलता है, सेंटर की जो बहन जी बैठी है वो अपनी लौकिक माँ को इस तरह से संबोधित करती है कि पता ही नहीं चलता लोगों को कि ये उसकी लौकिक माँ है। युगल एक दूसरे को भाई बहन कहते हैं, ये सब अजीब संबंध है यहाँ पर, अजीबो गरीब। तो इन संबंधों के आधार पर कि लगा यहाँ कुछ तो है नया है जो बाकी जगह नहीं है ऐसा। ये संस्था ही विचित्र है, ये संप्रदाय ही विचित्र है, सब अलग है यहाँ पर। तो ये जो संबंध है, और दूसरा संबंध परमात्मा से संबंध जुड़ा, परिचय मिला और एक संबंध जुड़ा, उस संबंध के आधार पर फिर निश्चय हुआ कि यही सत्य है और इसके अतिरिक्त तो कुछ भी सत्य नहीं है। जो यहां सुनाया जा रहा है और जो ये है यही सत्य है। जिनका ये फाउंडेशन पक्का रहता है वो पूरा जीवन भर अडोल रहते हैं, जिनका यही गड़बड़ हो जाती है वो फिर नई नई संस्थाएं होती है संसार में, फिर यहां तृप्ति होती है, फिर यहां से कहीं कहीं और जाते हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, कितना भी समय हो उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए यात्रा हो सके तो संदेह से चालू करो ताकि निश्चय पर पहुंचे। सीधा संशय निश्चय से यात्रा चालू करते कि हमें तो पूरा विश्वास हो गया यही सत्य है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि निश्चय से यात्रा चालू की और फिर बागे आगे जाके 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल के बाद संशय आता है कि यहां पर भी ऐसा होता है, यहां पर भी ये सब। इसलिए अच्छा यही होगा कि संदेह से चालू करो सब कुछ। आज की मुरली ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये ब्लाइंड फेथ का ज्ञान नहीं है। क्वेश्चनिंग करना ये कोई ये नहीं दिखा रहा है कि हमें ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चनिंग करना है। दो शब्द, एक है संशय एक है संदेह, दोनों अलग अलग है, डिक्शनरी कहता है दोनों एक है। संशय अर्थात डाउट, हमको तो डाउट है, ये वाली स्टेज तो हम क्रॉस कर चुके हैं। अभी जो स्टेज है वो कौन सी है, संदेह की अवस्था है और वो होनी ही चाहिए। वो है ज्ञान को समझने के लिए, ज्ञान की डेप्थ में जाने के लिए कि भगवान एक है फिर भी उसके होते हुए भी ये स्प्लिंटर ग्रुप्स कैसे निकले, विष्णु पार्टी शंकर पार्टी कितनी पार्टियां निकली है पता नहीं, 1976 से निकलना चालू हो गया एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बहुत सारी है, एक नहीं है ढेर सारी, और तभी से निकलना चालू हो गया। और बाबा को भी पूछा गया, बाबा चुप। ये संशय निश्चय की परीक्षा है, एक ही नहीं। और यहां जिन्होंने दादियों की गोद में पालना ली, ओम शांति भवन की स्टेज में जिन्होंने डांस किया सब किया, वो है ही नहीं आज। जो विदेशी भाई बहने बाबा से 10-10 मिनट बाबा ने जिनको दृष्टि दी हिस्ट्री हॉल में और मिले, वो सब छोड़ के चले गए, वो है ही नहीं। यज्ञ में ऐसी भी कुछ किताबें अभी भी है जिनके जो लेखक है ऑथर्स है वो आज संस्था में नहीं है, जिसको बचपन से पाला वो भी नहीं है, जिन्होंने खून से लिख के दिया वो नहीं है, यहां तक कि ये जो आदिदेव किताब है, आदिदेव किताब जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, ये भाग एक और भाग दो है। इसका जिसने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, जिस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति की अभी एक दूसरी संस्था है विदेश में, यस, उसकी वो इस संस्था में नहीं है। इनर ब्यूटी किताब है यज्ञ में इस समय, इनर ब्यूटी इंग्लिश की बुक है, बहुत पावरफुल बुक है, उसकी जो लेखिका है वो यज्ञ में नहीं है अभी, उसकी किताब है क्योंकि, और उसमें पूरा निश्चय बुद्धि से लिखी हुई किताब उसके जो तो ये सब है जो यहां थे आज है नहीं, दादियों के गोद में जिन्होंने पालना ली है वो आज नहीं है। तो बाबा को पता नहीं था जब बाबा मिल रहे थे विदेशी से कि ये मुझे छोड़ के जाने वाला है, 10-10 मिनट 10-10 मिनट उसको वरदान दे रहे थे। ये भी एक प्रश्न है कि भगवान को पता नहीं ये छोड़ के जाने वाला है, एक रीति से देखा जाए तो टाइम वेस्ट, परंतु वो शायद उसका भाग्य था, उतना ही भाग्य था उसका, पुण्य किया था भगवान ने चुप तो किया, बस भावना का भाड़ा। तो तीसरा संबंध, चौथा धारणाएं, यहाँ जो धारणाएं थी, बहनों को देखा, श्वेत वस्त्रधारी बहनें, उनके चेहरे पर जो तेज, वो आकर्षण, वो ब्रह्मचर्य, जो भाई बहनों के सेंटर पर गए और जो कुछ देखा एकदम आकर्षण हो गया, और बहनों ने, कुमारियों ने, कुमारों ने सोच लिया हमको बस ऐसा ही बनना है, दादियों को देखा बस इन जैसा हमको बनना है, उनको कुछ पता नहीं ये क्या ज्ञान है, कुछ नहीं पता, बस ये जो है बस ऐसा बनना है, कुछ भी हो जाए। ये आकर्षण प्यूरिटी का आकर्षण है, वो देखा और बस स्वप्न में वही दिखने लगे, इन जैसा बनना है। हमें याद है जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे, अचानक देखा था ब्रह्मा कुमारी आ रही है, हमें पता नहीं था, नाम भी नहीं सुना था, तब उन पर एक कविता लिखी थी, वो वाइट, वो ब्रह्मा कुमारी था ये भी नहीं पता था वो कहां गई पता नहीं, गुम हो गई, पर तब लिखा था, और उसके बाद में कोई संपर्क नहीं, कभी नहीं, बस वो देखा था, पर उनमें कुछ तो था, एक अजीब सा आकर्षण था। तो धारणा है, और सबसे बड़ी धारणा है प्यूरिटी की धारणा, सबसे बड़ी धारणा है प्यूरिटी की धारणा। सेंटर छोटा सा है, वहां बैठने के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी एकदम आकर्षण। उनका त्याग, उनकी तपस्या, सब कुछ उसके आधार पर निश्चय दृढ़ हुआ, निश्चय परिपक्व होता गया धीरे 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 वो देखकर। उसके बाद में अगला स्वपरिवर्तन आए, और देखा अचानक परिवर्तन हो गया, एक ही दिन सुना कि जल्दी उठना चाहिए, दूसरे दिन सीधा उठना चालू कर दिया, जो आज तक उठे नहीं थे, व्यसनों में अधीन के अधीन थे, हिरे हुए थे, सारे व्यसन छूटते गए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ये निश्चय का आधार बना, जो कोई नहीं कर सका इन्होंने कर दिखाया, जो कोई नहीं कर सका, लोग इतने समझाते थे ये छोड़ दो वो छोड़ दो पर नहीं छोड़ा, पर यहां आते ही सब छूट गया, निश्चय हो गया। तो एक आधार क्या है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अगला दूसरों का परिवर्तन देखा, जिसको हम जानते थे ये कभी सुधरने वाला नहीं था, या माँ बाप ने देखा उनका बेटा कितना बिगड़ गया है और अचानक सब कुछ ठीक हो गया उसका, फिर पूछते तुम क्या कर रहे हो आजकल, तब पता चला वो वहां जाता है, दूसरों का परिवर्तन, एक खुद का एक दूसरों का। अगला डीप एक्सपीरियंस। सातवां बहुत गहरा अनुभव हो गया, बैठे बाबा के कमरे में और अचानक अनुभव हो गया, पहले दिन ही कहीं गए, सेंटर पर गए, वहां बैठे थे और लगा बस यही सत्य है, डीप एक्सपीरियंस हो गया, एक सेकेंड का हुआ भले बट बहुत गहरा था, वो आधार बन गया निश्चय का। और आठवां जिसकी खोज थी जन्म जन्म से, एक प्यास थी, एक क्यूरियोसिटी थी, उत्कंठा थी, एक अभिप्सा, एक पिपासा, एक डीप थ्रस्ट, इंग्लिश में कहते क्वेस्ट, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, एज द हार्ट पैंटेड आफ्टर वाटर ब्रुक सो माई हार्ट पैंटेड आफ्टर धी ओ लॉर्ड। जैसे हिरन जल को ढूंढता है वैसे उसको ढूंढ रहा होता, और यहां आते के आते ही ये पता चला वो प्यास बुझ मिट गई। तो ये भी एक आधार है, ऐसे ये कितने हुए, आठ। और एक आठ नौवा आधार भी है, परंतु सबके लिए नहीं है वो, कोई कोई के लिए। कौन सा एक आधार है जिसके आधार पर निश्चय बुद्धि हुए, वन मोर बट ऑप्शनल वैकल्पिक, साक्षात्कार, जो सबके लिए नहीं है, किसी किसी को साक्षात्कार हो गया बस स्टार्टिंग, शुरुआत नहीं, अभी अभी बात की बात, फर्स्ट जनरेशन नहीं। साक्षात्कार के आधार पर देखा और सेंटर तक पहुंच गए, स्वप्न में दिखा सेंटर तक पहुंच गए। अभी दादियों के होते हैं, पहले ब्रह्मा के होते थे, तो ये भी एक आधार है। तो निश्चय की यात्रा है, और निश्चय की यात्रा डगमग ना हो, कितने भी ग्रुप्स फॉर्म हो जाए, और माया का सबसे बड़ा रूप होगा भगवान, माया का सबसे बड़ा रूप होगा भगवान।
साक्षात्कार हुआ ना एक्सपीरियंस हुआ, फिर भी चल रहा है निश्चय,
वो फिर वही है कि वो निश्चय वास्तव में निश्चय नहीं है, वो थोड़ा सा ब्लाइंड फेथ है, वो आगे जाके डगमग हो सकता है परिस्थिति आने पर। अभी सब लोग कह रहे हैं, सब लोगों का निश्चय है, मॉब मेंटेलिटी है, इसलिए निश्चय। अगर सब लोगों में से 10 लोग हट जाए पीछे तो हो सकता है वो उनके साथ चले जाए, क्योंकि उनका निश्चय किस पर आधार है? ग्रुप मॉब मेंटेलिटी पर। जैसे एक बार एक टूरिस्ट बस जा रही थी और वो टूरिस्ट में बहुत सारे यात्री थे, 30-40, और बस फेल हो गई, बस रुक गई। तो काम चालू था पर उनको इतनी भूख लगी तो, और वो कहीं बीच जंगल में रास्ता था, वहाँ रुक गई। तो गांव के लोग थे भोले वाले, उनको लगा इनकी मदद करना चाहिए और सब भूखे होंगे ये लोग, तो गांव वाले अपने गांव का भोजन लेकर आ गए उनको देने के लिए, उन यात्रियों को। तो वो जो टूरिस्ट थे सारे बस में, जो यात्री थे, उन्होंने उस भोजन को देखा और उनको, उनके टाइप वाला भोजन नहीं था वो जो रोज खाते वो नहीं था, उनको थोड़ा डाउट लगा, ये भोजन तो ठीक नहीं है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा एक काम करते हैं, पहले ये भोजन वो जो कुत्ता है ना उसको खिलाते, अगर उसने खा लिया तो फिर हम खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। तो एक स्ट्रे डॉग, एक आवारा कुत्ता वहाँ गुजर रहा होता है, उसको वो थोड़ा सा भोजन खिलाते हैं, और भोजन कुत्ता बहुत प्यार से खाता है, आनंद से, और फिर इधर उधर घूमते रहता है, तो सबको लगता है भोजन सेफ है। भले दिखने में कुछ अजीब और गरीब है, बास भी अच्छी नहीं आ रही है उस भोजन की, गांव के आदिवासी लोग हैं उन्होंने ला के दिया है, और सब यात्री भोजन खा लेते हैं, निश्चिंत होकर सो जाते हैं वहीं आसपास, गाड़ी का काम चालू है। सुबह उठते हैं तो देखते कुत्ता मर गया है, सबको उल्टियां चालू हो जाती है 30-40 जो यात्री थे सभी को उल्टियां चालू हो जाती है, किसी को कुछ कुछ होने लगता है कोई कैसे कैसे मुंह बनाने लगता है, ऐसे ऐसे करने लगता है, सोच सोच के कि कुत्ता मर गया, लेड पॉइजनिंग, मतलब भोजन विषाक्त था, भोजन विष मिला हुआ था भोजन में, कुछ कुछ होने लगता है। और कुछ लोग बड़ी मुश्किल से देखते वहां डॉक्टर कहीं है क्या, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर को कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गया है, सारे यात्री सभी उल्टियां कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं अच्छा, और डॉक्टर कहते हैं मैं खुद जांच पड़ताल करूंगा। जो डॉक्टर आता है वहां पे, कुत्ता कहाँ है, एक गड्ढे में गिरा हुआ है, मरा हुआ है, वहां एक गांव का आदमी बैठा हुआ है। डॉक्टर उससे पूछता है क्या हुआ था, वो कहता है एक ट्रक जा रहा था, उस ट्रक ने कुत्ते को चोट लगा, ठोकर मार दी, कुत्ता मर गया, तो मैंने उठा के यहां डाल दिया, अब बताओ वो जो उल्टी आई वो क्यों आई, निश्चय हो गया, फेथ हो गया कि हमने जो खाया है वो भोजन विषाक्त है, और एक की मान्यता को दूसरे ने क्या कर दिया, बहुत पुष्ट कर दिया। इसलिए सब लोग, 10 लोग ज्ञान में चल रहे, उसमें से 9 कुमार छोड़ के जा रहे, कहते ये कुछ फायदा नहीं है यहाँ पर, वो उधर का ही जीवन ठीक था, यहाँ कहाँ फंस गए हम ब्रह्मा कुमारी में, तो एक बचा है बस, 9 चले गए। इसको लगता है 9 गए, कुछ तो बात होगी उनकी, बात कुछ तो होगा, ऐसे थोड़ी ना जाएंगा कोई, कुछ तो होगा ही ना, कोई बुद्धू थोड़ी ना है वो, उन्होंने मुझे ज्ञान में लाया था और वो खुद जा चले गए, तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, जरूर उन्होंने सोच समझ के ये फैसला किया किया होगा, इसलिए मुझे भी जाना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे, निश्चय कहेंगे। हमारा निश्चय हिलता है दूसरों के विचारों से, मतों से, इसलिए पूर्ण निश्चय बुद्धि, बाबा ने कहा केवल 8, संपूर्ण 100%। इसलिए निश्चय कहा एक यात्रा है। कई बार उदासी आ जाती है जीवन में, बाबा उत्तर नहीं दे रहा है, ना कोई सीनियर से उत्तर मिल रहा है, क्या कर रहे हैं यहां, इतने दिनों से पति की तबीयत खराब है, बाबा कुछ करता ही नहीं। एक माता ने ओपड़ी में आके बताया था, हम वो अभी नहीं है ज्ञान में, वो कहती थी पहले यहीं थी तो हमेशा उसके पति बीमार रहते थे, तो इतना इधर मिले, दादियों से मिले, बाप दादा से मिले, कभी ठीक नहीं हुए, अभी एक गुरुजी मिल गए उसको कहीं, वो उनकी शरण में जब से गई तब से एकदम पति की तबीयत ही ठीक हो गई। निश्चय क्या कहते हो बाबा, क्या कहते, दल बदली इधर से उधर, इधर से उधर, क्योंकि आए किस आधार से थे, कोई लौकिक इच्छा के आधार से आए थे। प्रभु प्रेम के लिए नहीं आए थे, इसलिए ज्ञान में आने का आधार क्या है उस पर आगे की यात्रा निर्भर करती है। माँ बाप ज्ञान में चल रहे टोली आधार थी, ब्रह्मा भोजन आधार था, ये डगमग हो सकता है। जिस दिन ये नहीं मिलेगा उस दिन डगमग होगा। मान सम्मान आधार था, आते ही VIP करके इंट्रोडक्शन हुआ ब्रह्मा कुमारी में, आते ही VIP कमरे मिले एकोमोडेशन के लिए, और जब पुराने हो गए तो वो नहीं मिले, तो फिर इच्छा खत्म। सुख सुविधाएं पहले जब नए नए थे तब VIP कहलाते थे, अब पुराने हो गए तो कोई देखता नहीं, तो ऐसा हो गया, हम क्या करें यहाँ। आधार क्या है, तो 8 आधार बताए। सबसे पहला हमारा आधार क्या हो, ज्ञान। इस ज्ञान को समझना है, लॉजिक हमारा आधार हो, अच्छे से समझना है इसको, भलीभांति समझना है, इसकी गहराई में जाना है, एक एक परत को खोलना है मुरली के, एक 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 निकालना है उसको, ऐसे बाल की खाल निकालते हैं ना वैसे, एक एक निकालना है, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। दूसरा आधार प्रेम, प्रभु प्रेम, यहां जो प्रेम है उस प्रेम का अनुभव करना है। संसार में जो प्रेम है कितना स्वार्थ उसमें भरा पड़ा है। एक बच्चा होता है, उसको एक पपी होता है ना, कुत्ते का पिल्लू, उससे बहुत प्यार होता है, इतना प्यार होता है, एक दिन देखता है कुत्ते का पिल्लू मर गया, वो इतना चिल्लाता है, इतना चिल्ला, उसके पिताजी आते कहते हैं चिल्लाओ मत, कुछ नहीं, यहाँ पे उसकी डेथ हुई ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लॉन बनाएंगे तुम्हारे लिए, एकदम खुश होता है। फिर यहाँ पे वो सीसॉ बनाएंगे, ऊपर नीचे होता है ना ऐसे वाला, वो झूला बनाएंगे, और फिर वहाँ तुम्हारे दोस्त खेलने आएंगे तुम्हारे साथ, और फिर वहाँ पर एक और कुछ कुछ करेंगे, बैठने की जगह बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बच्चा खुश हो जाता है, अरे वाह ये सब होगा जहाँ कुत्ता मरा, और थोड़ी देर के बाद देखता है कुत्ता वापस आ रहा है, कुत्ता बेहोश हो गया था एक्चुअली, मरा नहीं था, अब वो कुत्ते को पत्थर मारता है क्योंकि अब उसका उसको क्या हो गया, ये मरने के बाद ये मिलने वाला, अब वो जिंदा हो गया क्योंकि वो मरा ही नहीं, अब उसको पत्थर मारता है, गुस्सा करता है उस पर। संसार का प्रेम भी ऐसा ही है, झूठा प्रेम है पिल्लू वाला प्रेम है, इस सेल्फिश प्रेम, रियल प्रेम नहीं है। रियल प्रेम अगर ढूंढना है तो यहां ढूंढो, रियल प्रेम बाबा से प्रेम, यही तुम्हारी तात बात, हर तात बात में बाप हो, आज का वरदान लास्ट लाइन। लोग कहे इनकी तो तात बात में बाप ही बाप है, जब देखो तो बाप बाप कहते रहते, बाबा बाबा कहते रहते, ये कहते हो, ये है प्रेम। तो रियल प्रेम, एक से प्यार, बाकी परिवार से प्यार अपने आप मिलेगा, बीज से कनेक्शन जोड़ो, पत्तों से कनेक्शन अपने आप हो जाएगा, किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं। तीसरा आधार संबंध, इस संबंध को और दृढ़ बनाओ, बाबा से संबंध, ब्रह्मा से संबंध। शिव पुराण में एक वर्णन है कि महादेव नंदी, नंदी से कहता है, नंदी के कान कैसे बड़े बड़े, क्योंकि महादेव के पास पहले वाहन था नहीं, विष्णु के पास वाहन था, ब्रह्मा के पास वाहन था, तो महादेव बेचारा एकदम ही वाहन विहीन। सो अचानक फिर वो देखता है, वो कोई ऋषि मुनि है, दोनों तपस्या कर रहे हैं, वो कहते क्या चाहिए, वो पार्वती उनसे मिलती है, वो कहती है हमको एक तो ज्ञानी पुत्र चाहिए या तो दीर्घकालीन। वो कहते अगर दीर्घकालीन चाहिए तो वो ज्ञानी नहीं होगा, वो बैल बुद्धि होगा। वो कहता है चलेगा, वो बैल बुद्धि, परंतु वो निरंतर शिव के साथ रहेगा। वो माँ बाप क्या नाम होता है ऋषि का, शिलांत शाणांत ऐसे कुछ नाम है नंदी के माँ बाप, तो वो पुत्र होता है और वो इसके साथ जाता है, तो उसके बड़े बड़े कान होते हैं और उसकी बुद्धि बैल बुद्धि होती है, ज़्यादा समझ में नहीं आता है उसको। परंतु शिव उससे क्या कहता है, मैं जो भी कहूंगा सबसे पहले तुम सुनोगे, और यदि किसी भक्त को मुझसे कुछ कहना है, अगर तुमसे वो कह दे तो भी वो मुझ तक पहुंचेगा, क्योंकि इसीलिए तुम्हारे कान बड़े बड़े। वो नंदी अर्थात ब्रह्मा, अगर शिव से कुछ कहना है और डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो रहा है तो ब्रह्मा से कह दो, वो उधर पहुंचा देगा, बड़े बड़े कान है उसके, मीडिएटर दलाल, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। नंदी को बोलना पड़ता है कान में, तब कहीं महाकालेश्वर के पास बात जाती है। तो तीसरा संबंध, तीसरा आधार संबंध, चौथा आधार धारणा, यहाँ की धारणाओं पर मजबूत होना है, तब निश्चय पक्का होगा। धारणा ही नहीं कर रहे तो कहाँ से निश्चय पक्का होगा, जो रूल्स रेगुलेशंस बताए हुए हैं उन पर चलो, अपने आप निश्चय पक्का होगा। नेक्स्ट स्वपरिवर्तन, जो हुआ वो क्यों हुआ, उसी के आधार पर निश्चय बढ़ेगा। और अपने आप को जितना परिवर्तन करोगे दोनों तरफ से, वो हुआ इसलिए ये, या वो करना इसलिए ये, अगला दूसरों का परिवर्तन जो हुआ उसके आधार से हमारा निश्चय बढ़ेगा, अगला अनुभव, एक गहरा अनुभव। इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ने का लक्ष्य नहीं रखना है, परंतु अनुभव करने का। और अव्यक्त मास में बैठ जाओ, लंबा लंबा समय बैठ कर अनुभव करने का अभ्यास। अगला प्यास, जो प्यास थी वो पूरी हो गई। तू शीतल झरना मेरे प्रभु, मैं हूं तेरी प्यासी हिरनी। शीतल झरने के पास ले चलो प्रभु तुम, मन की अभिलाषा को पूरा करो तुम, अमृत जल मुझको पिला दो। प्यास किसकी है, हे अमृत, अमृत वो अमृत, हम अमृत की संतान है, अमृतस्य पुत्रा, अमृत का सागर है वो। तू शीतल झरना मेरे प्रभु तू, मैं हूँ तेरी प्यासी हिरनी। जब मैं खो जाती हूँ जग के अंधियारे में, जब मैं घबराती हूँ बेचैनी दिल में, शुभ सरिता मुझ में बहा दे। तू शीतल झरना मेरे प्रभु, मैं हूँ तेरी प्यासी हिरनी। ओम शांति।
तू शीतल झरना।